नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज शाम जापान की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री की ये 8वीं जापान यात्रा है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ ये उनकी पहली शिखर बैठक होगी। इस बीच जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खोलेगी।
जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज ने कहा कि विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंध द्विपक्षीय के साथ ही बहुपक्षीय भी है।
वेरी फ्यू कंट्रीज हैव वी रिलेशनशिप वी कॉल इट स्पेशल बट वी कॉल इट बिटवीन इंडिया एंड जापान इट इज अ पार्टनरशिप इट इज स्ट्रेटेजिक एंड ऑल्सो इट इज ग्लोबल इट हैज बोथ बायलैटरल एंड प्लूरिलैटरल एस्पेक्ट इन इट।
जापान में भारत के राजदूत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत अमृतकाल की यात्रा के मध्य में है और ये यात्रा भारत को एक विकसित देश बनाने की है जिसमें विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा होगा। भारत की अमृतकाल यात्रा में जापान एक प्रमुख और विश्वसनीय भागीदार बना रहेगा। टोक्यो से ओम अवस्थी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री चीन जाएंगे। वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अर्जेंटीना ने भारतीय नागरिकों के लिए अपने प्रवेश नियमों में ढील दी है। इससे वैध अमरीकी पर्यटक वीजा धारकों को अर्जेंटीना की यात्रा के लिए अलग से वीजा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। निर्णय का स्वागत करते हुए भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसिनो ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये दोनों देशों के लिए एक अच्छी खबर है। उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना देश में और अधिक भारतीय पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जनधन योजना को आज 11 वर्ष हो गए हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से इस पहल की घोषणा की थी। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने इस अवसर को गरीबों का दुष्चक्र से मुक्ति का उत्सव बताया था। इससे पहले सरकार ने कपास के आयात पर 19 अगस्त से 30 सितंबर तक अस्थायी छूट दी थी। सरकार ने कच्चे कपास के आयात पर कर छूट इस वर्ष 30 सितंबर से 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह फैसला भारतीय वस्त्र उद्योग के लिए कपास की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। मूसलाधार बारिश के कारण अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। पंजाब में भी मूसलाधार बारिश से बाढ़ का प्रकोप लगातार जारी है। सेना, वायुसेना, बीएसएफ और एनडीआरएफ के साथ साथ पंजाब पुलिस तथा स्थानीय लोग राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। तेलंगाना में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई गांव जलमग्न हो गए हैं जबकि कस्बे और शहर बाढ़ की चपेट में हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अगले 5 दिन तक बारिश की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा के लोगों को नुआखाई पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ये पर्व कृषि के प्रति सम्मान और किसानों के प्रति आभार व्यक्त करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने कहा कि ये पर्व सभी के जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि लाने वाला है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सिंक फील्ड कप में उप विजेता बनकर अपनी जगह पक्की की है। अमेरिका के वेस्ली सो ने इस टूर्नामेंट का खिताब जीता। बैडमिंटन में भारत की शीर्ष पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तथा ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु कल पेरिस में बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप के अंतिम 16 में पहुंच गए। सात्विक और चिराग भारतीय की जोड़ी ने चीनी ताइपे के लियू क्वांगहेंग और यांग पोहॉन को हराया। अब उनका सामना चीन के लियांग वेंगकेंग और वांग चांग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।